ओम शांति। कल से चर्चा चल रही है स्वराज्य रहस्य के चार सत्ताओं की, बौद्धिक सत्ता, भावुक सत्ता, ऐच्छिक सत्ता और अनैच्छिक सत्ता, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, इंटेलेक्चुअल सेंटर, इमोशनल सेंटर, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। कल हमने इंटेलेक्चुअल सेंटर्स के फोर डिपार्टमेंट्स की चर्चा की। लास्ट था मेमोरी, स्मृति, जो बुद्धि का इनवॉलेंट्री है, बुद्धि का सबसे यांत्रिक भाग है वो, और बहुत तीव्र गति से और स्वसंचालित ढंग से काम करता है हमारे जीवन में। स्मृति का यह भाग पूर्णतः मैकेनिकल है, यांत्रिक है, यांत्रिक व्यवस्थाओं से संपन्न है, बहुत तीव्रता से कार्य करता है, लेकिन यंत्र की तरह कार्य करता है, लेकिन उसे यांत्रिकता में नहीं बदलना चाहिए। अपने आप नहीं, तेजी से भले कार्य करे, लेकिन बौद्धिक सत्ता के, बौद्धिक विभाग के अधीन कार्य करे, या कहें कि आत्मा के अधीन कार्य करे स्मृति। तेजी से भले कार्य करे, लेकिन मैकेनिकल नहीं हो, यांत्रिक नहीं हो, अपने आप वो संचालित नहीं हो, हमारे कंट्रोल में संचालित हो। हाँ, इनवॉलेंट्री तो है, वो स्वसंचालित है, क्योंकि उसकी कार्य प्रणाली बहुत तीव्र है, और बहुत तीव्र के साथ साथ अवचेतन तक है। जैसे मान लो कि नागराज भाई मेरे सामने आया, तो स्मृति सेकंड के हजारवें हिस्से में कार्य करती कि ये व्यक्ति कौन है, और फटाफट उसका उत्तर अंदर आ जाता है। स्मृति इतनी तीव्रता से कार्य करती है। यदि आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो स्मृति बहुत तीव्रता से कार्य करती है, क्योंकि प्रश्न का जवाब आपके स्मृति कोष में आपके प्रश्न के चुनौती से, चैलेंज से उत्तर निकलता है, क्योंकि वहाँ हजारों तरह की स्मृतियाँ हैं, जिसमें अनुभव है, जिसमें विचार है, जिसमें सारी चीज़ें संग्रहित है, इसलिए उसको कंप्यूटर की तरह बहुत तेज़ी से काम करना पड़ता है, प्रोसेसिंग करना पड़ता है। आपके किसी भी प्रश्न का तुरंत उत्तर वो भाव केंद्र से भी देता है, बुद्धि के केंद्र से भी देता है, और इमोशन के केंद्र से भी देता है, सभी केंद्रों से देता है फटाफट। कई बार एक साथ सारे के सारे 31 केंद्र संचालित रहते एक साथ, और ये सब कुछ स्मृति में है। तो स्मृति बहुत शक्तिशाली चीज है हमारे जीवन में, लेकिन वो स्मृति स्मृति की तरह काम नहीं करता है, व्यक्ति की तरह काम करता है, क्योंकि जब वो विचार के रूप में बदलता है तो विचार मैं के रूप में बदल जाता है, और मैं झूठे मैं के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। उसे कार्य करना चाहिए था, लेकिन झूठे मैं के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए था, यह समस्या है सबसे बड़ी। आज हम भावुक भाग की चर्चा करेंगे, इमोशनल डिपार्टमेंट। इमोशनल डिपार्टमेंट का इंटेलेक्चुअल विभाग, यानी भावुक सत्ता का बौद्धिक विभाग कैसे कार्य करता है। कल हमने बौद्धिक सत्ता का बौद्धिक विभाग कैसे कार्य करता था, आज हम भावुक सत्ता का बौद्धिक विभाग कैसे कार्य करता है। बौद्धिक विभाग कार्य करता है कलात्मक और सृजनात्मक रूप से। हमारे जीवन में जितनी भी श्रेष्ठतम कृतियां हैं, जितने भी श्रेष्ठतम निर्माण होते हैं विचार और भावना के तल पर, वह सब इस इमोशनल डिपार्टमेंट के बौद्धिक विभाग का काम है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी ग्रंथ है, जो भी सृजन है साहित्य के जगत में, जो भी सौंदर्य के जगत में जो भी सृजन है, कलाकृतियां हैं, वो इस विभाग का काम है। बहुत बड़े बड़े ग्रंथों के निर्माण का, बहुत बड़ी बड़ी लंबे लंबे किताबों की बहुत बड़ी बड़ी कहानियों का सृजन, ये इस विभाग का कार्य है। मैं करीब 13-14 साल का था, दसवीं में था करीब, तो हम एक किताब पढ़ते थे, अब तो उसका सीरियल निकला था चंद्रकांता करके, तो चंद्रकांता संतति एक किताब थी, बाबू देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। तो दसवीं में मैं उस किताब को पढ़ा, इतना 22 वॉल्यूम्स में वो बुक्स थी। उस समय उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को नहीं कहते थे, बाबू देवकी नंदन खत्री को कहते थे। अद्भुत किताब, पूरा चंद्रकांता संतति, उसका नाम है चंद्रकांता संतति। मैंने पढ़ा उसको, दसवीं में ही पढ़ डाला था, उसके 22 भाग को मैंने पढ़ा था उस समय। तो ये बड़ी बड़ी कहानियों का सृजन इस विभाग का काम है। एक अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ के भाई थे, बड़े भाई थे, अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल के जो चित्रकला है उसके बहुत बड़े वो थे, चित्रकार थे। उनका एक शिष्य था नंदलाल बसु। एक बार अवनींद्रनाथ ने नंदलाल बसु को बुलाया कि एक चित्र बनाओ, और नंदलाल बसु उस समय बहुत अच्छे चित्रकार, बहुत अच्छे चित्रकार बन गए थे, उनका सबसे मुख्य शिष्य था। लेकिन जब वो एक सुंदर सा कृष्ण का चित्र बनाया और अवनींद्रनाथ के सामने रखा, तो अवनींद्रनाथ के अपने एक दोस्त भी थे, उनके साथ बैठे थे, जब उसने उस चित्र को देखा तो चित्र को, चित्र की बहुत भर्त्सना की, दुत्कारा, और नंदलाल बसु को कहा कि ऐसा चित्र तो बंगाल के पटिए बनाते हैं। बंगाल में भी पटिए होते हैं ना, जो गांव में जाकर के चित्र खींचते हैं, चित्रकला करते हैं, तो वो बनाते हैं। बेचारा नंदलाल बसु अपना चित्र समेटा और वहां से चला गया। अवनींद्रनाथ को उसके मित्र ने कहा कि लेकिन ऐसा चित्र तो तुम भी नहीं बना सकते हो जैसा चित्र इसने, नंदलाल बसु ने बनाया। फिर इसकी इतनी भर्त्सना, कहा कि इसमें अनंत संभावनाएं हैं, ये इससे भी अनंत गुना ज्यादा आगे विकसित हो सकता है। इसके लिए उसके आंख में आंसू आ गए, अवनींद्रनाथ टैगोर की आंख में। और नंदलाल बसु, नंदलाल बोस के नाम से विख्यात हुआ, बंगाल के शैली के बहुत महानतम चित्रकारों में से, महानतम चित्रकारों में पिकासो का नाम आपने सुना होगा, बंगाल में जैमिनी रॉय का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग हैं जो चित्रकला में। तो यह इस विभाग का काम है। भारतीय दर्शन का जो निर्माण हुआ है, कौन कौन से है भारतीय दर्शन में, पता है सबको? भारतीय दर्शन के नाम खट दर्शन बोलते हैं ना, खट दर्शन, नागराज भाई खट दर्शन बोलते हैं। छह दर्शन कौन सा है? स्वदर्शन। स्वदर्शन तो एक दर्शन हुआ, और स्वदर्शन में तो हजारों दर्शन है, हैं? फिलॉसफी को बोलते हैं, और हम कहते हैं ना सब दर्शन, सांख्य दर्शन, देखो एक दर्शन आया। सांख्य दर्शन कल हमने चर्चा किया था, हैं? सांख्य, इन्होंने दो तीन बताया, सांख्य, योग, न्याय, वैशिष्य, वेदांत और योग, ये चार दर्शन हैं। शायद मैं पूरा नाम, योग, सांख्य, योग, न्याय, वैशिष्य, मीमांसा, एक मीमांसा रह गया, मीमांसा और वेदांत, ये है। और इसके संस्थापक जो लेखक हैं वो कौन हैं? सांख्य का निर्माता है कपिल, योग का है पतंजलि, सब जानते हैं, न्याय का है गौतम, ऋषि गौतम ने न्याय का रचना किया, और वैशिष्य का कनाद। कनाद का नाम सुना है आप लोगों ने? कनाद ऐसे ऋषि थे जो मात्र राजा खेत खलिहान में जब अनाज कट जाते थे तो जो गिरे हुए अनाज होते थे ना, उस कण को चुन करके वो घर ले जाते थे और पका करके एक टाइम खा लेते थे, इसलिए उनका नाम कनाद था, कण चुन करके वो खाते थे। तो और सारा दिन लिखने में लगे रहते थे, सृजन में लगे रहते थे, तो कनाद। इसके बाद जैमिनी, मीमांसा का जैमिनी, नाम सुना, जैमिनी का नाम सुना होगा, और वेदांत का बादरायन, बादरायन। तो ये हमें एक बार ना एक सन्यासी ने पूछ दिया, छह दर्शन के नाम बताओ, पांच पांच तक तो हम चले गए थे, छठा भूल गया, ये मीमांसा भूल गया था। तो और कला के क्षेत्र में ये सब चित्रकार हुए हैं, सृजन के ग्रंथों के क्षेत्र में ये सब लोग हुए हैं। और आपने महर्षि अरविंद का नाम सुना होगा। महर्षि अरविंद ने भी अपने पिछले लास्ट के 12-15 वर्षों में जब वो मौन थे तो उन्होंने बड़े बड़े साहित्य का सृजन किया। वेदांत उसने उन्होंने सृजन किया था योग दर्शन, योग समन्वय बोलते हैं उसको। इसके बाद सावित्री आप ये जो किताबें हैं योग समन्वय, सावित्री, द लाइफ डिवाइन, ये सब बुक्स हमारे पास है। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं वो सब। और यदि सावित्री आप पढ़ेंगे, और तो हम तो उन तीनों किताबों को पढ़ रहे थे, तो आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, मैं योग समन्वय पढ़ रहा था और द लाइफ डिवाइन, हमारे डॉक्टर साहब पढ़े हैं लाइफ डिवाइन, वो एक दिन आए थे हमारे पास लाइब्रेरी में देख रहे थे। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे पढ़ने और उसको समझने में, जबकि वो हिंदी में लिखी हुई थी, उन्होंने तो इंग्लिश में लिखा है महर्षि अरविंद ने। तो एक राज की बात बताऊं, बाबा को तो मैंने याद किया और मैंने महर्षि अरविंद को याद किया। एक दिन मैं योग में बैठ के ना मैंने उस चेतना से संपर्क किया और मैंने उससे इतना कहा कि मुझे बताओ कि क्या लिखे हो आपने इन इन चीज़ों में, क्योंकि वंडरफुल है। यदि आप हमारे पास आओ, योग समन्वय में मैं आपको दे दूं आपके हाथ में, और आपको बोलूं कि किसी भी पेज से कोई एक पेज खोलो और पढ़ो और मेरे को उसका अर्थ बताओ, आप जो लोग हिंदी वाले हैं वो हैरान हो जाएंगे, पूरा का पूरा नहीं बता सकते। एक दिन आकर के आप लोग देखना उसको, उस किताब। तो ऐसे और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे सारा का सारा पता चला, उस पर सारी के सारे रहस्य का पता चला उस किताबों का। तो इन अद्भुत ग्रंथों का जो सृजन है यह इस बौद्धिक विभाग, भावुक विभाग का बौद्धिक डिपार्टमेंट जो है ये इसका कार्य है। इसके बहुत सारे कार्य हैं और अब हम इसके कार्यों को कहीं कुछ छूट नहीं जाए ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसका विश्लेषण कर देता हूँ कि इसके सब कार्य अलग अलग कैसे हैं, नहीं तो रह जाएंगे इसके कार्य, नहीं तो एक एक चीज में विस्तार से हम चले जाते हैं। इसमें यांत्रिक भाग के मदद से, इस बौद्धिक विभाग का जो कार्य है इसमें यांत्रिक विभाग के मदद से कलात्मक सृजन का काम होता है। यांत्रिक विभाग की मदद से माना हाथ से काम होता है, लेकिन होता है भावना और बुद्धि के द्वारा। जीवन जीने की कला और जितनी भी कला है इस तरह की, जो सृजनात्मक क्षमता को प्रकट करने के लिए प्रशिक्षित यंत्र मानव की जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि इस कार्य को करना हो तो उसमें प्रशिक्षण चाहिए। यदि आपको कुछ किसी चित्रकारी करनी है तो अंदर भाव भी चाहिए, अंदर विचार भी चाहिए, थीम भी चाहिए, विचार भी चाहिए, लेकिन हाथ में कुशलता भी चाहिए ब्रश चलाने के लिए। यदि हाथ में कुशलता नहीं है तो नहीं होगा। तो इस यंत्र की भी जरूरत है, बुद्धि की भी जरूरत है, भाव की भी जरूरत है। तो इन सब चीज़ों की जरूरत इस विभाग का कार्य पड़ता है और इस विभाग की इस मदद से ये सब कार्य होता है। यह भाव सत्ता के अनेक भागों, इच्छा, कामनाओं, संवेदनाओं, भावावेग तथा दूसरे अनेक क्रियाकलापों, बोल, विचार तथा हस्तों द्वारा मनोनुकूल सृजनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करता है। जैसा आप चाहे वैसा इसका निर्माण कर सकते हैं, चाहे भाव से चाहे विचार से। जैसे बोलने की कला है तो बोलने की कला में भव्यता, श्रेष्ठता, दिव्यता, जैसे बाबा ने कहा कि प्रेरणा के बोल हो, मोती के बोल हो, गिनती के बोल हो, अमोल बोल हो, हाँ, अलंकारिक हो, तो ये सब इस भावुक विभाग का बौद्धिक डिपार्टमेंट है। यानी बुद्धि की इसमें बहुत जरूरत पड़ती है। इसके बाद इसका भावुक डिपार्टमेंट क्या है, भावुक सत्ता का भावुक डिपार्टमेंट, इमोशनल सेंटर का इमोशनल डिपार्टमेंट है। प्रेम, हर्ष, शोक, घृणा तथा अन्यान्य हृदयगत भाव जो हैं वो इसके कार्य हैं। घृणा का भी इसका कार्य है। घृणा का जो वास्तविक अर्थ है वो गंदगी से घृणा के संदर्भ में, ताकि बीमारी और कीटाणु न फैले, तो वहां से इस घृणा का संबंध है। इस घृणा का संबंध मनुष्य के कार्य व्यवहार से नहीं है वास्तव में, उससे है, लेकिन लोग इससे जोड़ करके उसको देखते हैं। यह भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न ढंग से प्रकट होता है। इसमें विनोद वृत्ति, हंसी खुशी के भाव, धार्मिक भाव, सौंदर्य भाव, नैतिक भाव, जो सही और गलत वाले विवेक से जुड़ा रहता है। नैतिकता, मोरल वैल्यू जितनी भी होती है ना हमारी, मोरल वैल्यू एक जगह सही होता है, दूसरी जगह मोरल वैल्यू नहीं रहता। एक जगह वो नियम सही होता है, दूसरी जगह वो नियम सही नहीं होता है। तो ये सब इन चीज़ों से जुड़ा हुआ था। परंतु अभिनेता की अवस्था में यह बिल्कुल अलग ढंग से लक्षण को प्रकट करता है। लेकिन जैसे ही पसंद और नापसंद से ये सब भाव जुड़ते हैं, चाहे हंसी खुशी के भाव, चाहे विनोद के भाव, चाहे हर्ष के भाव, चाहे जो भी ये भाव है, ये यदि अभिनेता की अवस्था में आ जाता है, एक रूपता की स्थिति में पसंद और नापसंद से जुड़ता है, तब इसके लक्षण विचित्र हो जाते हैं। तब इसके लक्षण हो जाते हैं वक्रोक्ति, कटाक्ष, उपहास, जिद, व्यंग, निष्ठुरता, नजरअंदाज, चलते चलते ठीक है, डोंट केयर जिसको बोलते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। बड़ी चतुराई से ये सब चीज़ें प्रकट हो जाता है। इस भाव का काम है। इस भाव का ये काम भी है, प्रेम, हर्ष, शांति, लेकिन एक रूपता की अवस्था में इसके सामान्य कार्य हैं। ये इसके विशेष कार्य हैं मोरल वैल्यूज के अनुसार, लेकिन इसके एक रूपता की अवस्था के कार्य हैं, जो इसके गलत कार्य हैं वो ये कार्य हैं वक्रोक्ति, कटाक्ष, व्यंग, ये सब टॉन्ट, और सवेरे से शाम तक ये भाग हमारा बहुत सक्रिय रहता है। व्यंग के और कटाक्ष के ये भाव हमारे सक्रिय बहुत ही रहते हैं। इसमें करुणा भी है, और करुणा का भाव भी है, और हाँ इसलिए करुणा भाई ठीक हैं, करुणा भाई भी ठीक हैं, उनको ऐसे बौद्धिक भाव, बुद्धि कैसे काम करते हैं। इस करुणा का दो महत्वपूर्ण पहलू है, इसका ये भाव करुणा के भाव होने चाहिए, इसका ये महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन करुणा के भाव नहीं होकर के जिद, व्यंग, इस सब के भाव ज़्यादा हमारे टोंट के तो पत्थर ना जेब में 8-10-20 लेकर के लोग चलते ही रहते हैं। किस पर कब उछालेंगे और कब किसको घायल करेंगे पता नहीं, और ये घायल ऐसा होना होता है कि इसमें तो क्या से इतिहास बदल जाते हैं। ये टोंट इतिहास, कौन सा बड़ा इतिहास हुआ है इसमें टोंट से, आप लोग बताओ। हैं, महाभारत इस एक कंकर से हुआ था, इस एक कंकर से सवेरे से शाम तक। और व्यंग और टोंट का, कटाक्ष का क्या अर्थ है? आपने जो ये कंकर उछाला वो दूसरे को लगा भी और उससे घायल भी किया, लेकिन यदि वो चिल्ला के बोलता है इतना मुझे घायल हो गया, तो आप कहेंगे कंकर से घायल हो गया, ये तो होता ही नहीं है कभी, कंकर से कोई घायल होता क्या? इतनी छोटी सी चीज़ है, इससे तुमको क्या होगा। का अर्थ है कि यदि आप कुछ बोलते हैं तो उसके दो अर्थ निकलते हैं, व्यंग के दो अर्थ निकलते हैं। यदि यदि वो आदमी बोलता है कि आपने ऐसा क्यों कहा मेरे, तो कहा मैंने ऐसा कहा, मैंने तो ये कहा था आपको, आपने तो इसको उल्टा ले लिया, लेकिन उल्टा लेने के लिए ही उसने कहा था उसको कि समझ, हाँ आपने उस भाव से ग्रहण किया, लेकिन हमने उसी भाव से कहा था जिस भाव से उसने ग्रहण किया, क्योंकि यदि उस भाव से ग्रहण नहीं करता तो हमारे कहने का कोई भी अर्थ नहीं होता, क्योंकि हमें तो कंकर मारना था ना। तो इस तरह के भाव हमारे अंदर होते रहते हैं। तो यह वास्तविक अवस्था में स्थित होने पर जो करुणा के भाव हैं, यह ज्योतिर्मय और करुणामय आत्मा जीवन व्यवहार के अस्तित्व में आती है। अमरत्व की वास्तविक अनुभूति ही वास्तविक करुणा को प्रकट करती है। यह करुणा का भाव है। यह है ऐच्छिक सत्ता का कौन सा भाव? भावुक भाग। अब ऐच्छिक सत्ता के यांत्रिक भाग की बात करते हैं, नहीं ऐच्छिक नहीं, भावुक सत्ता का ऐच्छिक भाव की बात करते हैं। हाँ, भावुक सत्ता का ऐच्छिक विभाग, इसको यांत्रिक विभाग बोलते हैं, मैकेनिकल मैकेनिकल पार्ट बोलते हैं। हाँ, यह सत्ता का जो यह भाग है ऐच्छिक भाग, यह श्रेष्ठ इच्छाओं, कामनाओं, नए ज्ञान, नए भाव, प्रचंड भावावेग, महत्वाकांक्षाएं, चीजों को अधिकार में लेने तथा उसे साकार कर देने वाले कर्म में ढाल देना, यह इसका मैकेनिकल पार्ट है। यानी ये इस भाग को हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, भावुक भाग के इस ऐच्छिक डिपार्टमेंट को हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि यह इसका मैकेनिकल पार्ट है। इस ऊपर वाले इस दो भाग को तो और पहले भाग को तो बहुत कम आदमी यूज करता है, बौद्धिक वाले भाग को बहुत कम और भावुक वाले भाग को भी बहुत कम यूज, टोंट कटाक्ष भी इतना थोड़े होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कभी कभी करते। इस भाग को भी हम ज़्यादा यूज नहीं करते, इसके अच्छे वाले भाग को भी ज़्यादा यूज हम नहीं करते हैं और इसके बुरे वाले भाग को भी ज़्यादा यूज हम नहीं करते। इस भाग को हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, भावुक भाग का जो वॉलेंट्री डिपार्टमेंट है, ऐच्छिक भाग है, वह है श्रेष्ठ इच्छाएँ। सवेरे शाम तक हम इच्छा करते हैं, उसमें श्रेष्ठ भी हो, साधारण भी, जो भी हो, इच्छा और कामनाएं, इच्छा और कामनाओं के बिना हमारा जीवन एक सेकंड भी नहीं चल सकता। प्रत्येक कार्य के लिए हमें इच्छा शक्ति, इसी को हम प्राण सत्ता बोलते हैं, प्राण सत्ता इसको बोलते हैं, जो बोलते हैं ना प्राण, प्राण माना इच्छा और कामना, प्राण इस चीज़ से बना है, कामना प्राप्ति और भोग, प्राण सत्ता किस चीज़ से बना है, कामना प्राप्ति और भोग, चाहिए उसको उपयोग करना है और उसे ग्रहण करना है, प्राप्त करना है, उस पर अधिकार करना है, यह है हमारा कामनात्मक सत्ता। तो सवेरे से शाम तक भावुक विभाग का जो ऐच्छिक डिपार्टमेंट है वह इन चीज़ों से बना हुआ है, कामनाओं से, नए ज्ञान, नए भाव, प्रचंड भावावेग, प्रचंड भावावेग में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही आ जाता है, महत्वाकांक्षाएँ, किसी चीज के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी हो जाना कि इस काम को हम करके ही रहेंगे, इसको हम पा करके ही रहेंगे, किसी भी भांति, इसको बोलते हैं प्रचंड महत्वाकांक्षाएं, चीजों को अधिकार में लेना तथा उसे साकार कर देने वाले कर्म में ढाल देना, यह इस भाग का, ये इस भाग का कार्य है, बहुत जबरदस्त कार्य है। इस भाग के प्रति आसक्ति बस तीव्रता, लालसा, डर, मिथ्या अभिमान, मान सम्मान, पसंद नापसंद इत्यादि द्वंद्वात्मक प्रतिक्रियाएं और दूसरे अनेक प्रकार के नकारात्मक भावों तथा तुच्छ इच्छा, ईर्ष्या, क्रोध, कामना इत्यादि से भरपूर रहता है, यह इसका ऐच्छिक डिपार्टमेंट है। इसमें ईर्ष्या भी, क्रोध भी, कामना भी और तुच्छ इच्छाएं, नकारात्मक भाग, श्रेष्ठ इच्छा भी है और तुच्छ इच्छा भी है। क्यों? क्योंकि जब यह डर, लालसा, मिथ्या अभिमान, मान सम्मान, पसंद नापसंद, इससे जैसे ही जुड़ता है ये ऊंच, ये भाव, कामना के भाव, इच्छा, जो भी ये श्रेष्ठ भाव हैं, जैसे ही इससे जुड़ता है तो ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, घृणा इत्यादि में बदल जाता है सवेरे से शाम तक। इसके सामान्य कार्य हैं ये, लेकिन हानिकारक कार्य हैं इसके, ये जब आत्मा की उपस्थिति में कार्य करता है तो डिवाइन कार्य करता है, ये जब आत्मा की उपस्थिति में नहीं कार्य करता है तो इसके ये सामान्य कार्य हैं जिसको हर एक व्यक्ति को करना ही पड़ता है, लेकिन इसके नुकसान भरे कार्य हैं जब यह एक रूपता की अवस्था में आ जाता है, यह कामना जब स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं, यह कामना जब महत्वाकांक्षा में बदल जाता है, इस कामना के प्रति जब यह चैलेंज हो जाता है, मान सम्मान, पसंद नापसंद, तब यह ईर्ष्या, नफरत, क्रोध और घृणा में बदल जाता है। यह डिपार्टमेंट हमारा सबसे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सबसे शांत है सबका, यह डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट पर बहुत देने की ज़रूरत है। हम चेक कर सकते हैं कि इस समय मेरी चेतना कहाँ है, इस समय हमारी चेतना भावुक सत्ता के ऐच्छिक डिपार्टमेंट में सक्रिय है, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, बैर, घृणा के। तो यदि हम ऐसा यदि चेक करें, यदि ऐसा हम इस पर ध्यान दें तो चीज़ें बदल जाएगी बहुत जल्दी, तब ये पता चलेगा कि ये सब हमारे अंदर हो रहा है कुछ, अभी हम इस सब का कारण बाहर समझते हैं, दूसरे व्यक्ति को समझते हैं। लेकिन ये दूसरे व्यक्ति की चीज नहीं, ये हमारी ही सब घटनाएं अंदर घट रही है, ये हमारे अंदर सब सक्रिय हो रहे हैं, ये सब हमारी चीजें। साधारण से लेकर निम्न स्तर का खेल कूद, साधारण से घटिया किस्म के मनोरंजन, ये सब भी हास्य, उत्तेजनात्मक चीजों के प्रति दिलचस्पी, ढोल तमाशा, सर्कस, आजकल अपना मोबाइल इत्यादि से प्रेम, आकर्षण और पसंद, संगठन में संगठन के लिए रहना, उसके लिए कार्य करना, जैसे अपना लोग संगठन बनाते हैं, वो भी इस विभाग का कार्य है। और फिर क्रूरता, स्वार्थ, डर, ईर्ष्या, शंका इत्यादि पाशविक भाव में रचे बसे रहना, यह भी इसका ऐच्छिक भाग है। ये सब इस डिपार्टमेंट के काम है। तो आप इस डिपार्टमेंट को, एक एक डिपार्टमेंट को आदमी एक 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 भाग को पढ़े और सारा दिन चेक करे कि इस संबंधी आज मेरे जीवन में क्या हो रहा है। इससे क्या सिद्ध होगा, इससे हमारे कर्म सिद्ध कैसे होते हैं। हम अत्यधिक जागृत, ऐसे लोगों को बोलो जागृत रहो, जागृत रहो का क्या अर्थ है, क्यों जागृत रहो, क्या जागृत रहो, जागा हुआ ही तो हूं, चल तो रहा हूं, सुन तो रहा हूं, समझ तो रहा हूं, सबको उत्तर तो दे रहा हूं, जागा ही हुआ हूं ना, और क्या जागा हूं। इसको हम जागृति का लेवल बोलते हैं कि भाव सत्ता में हमारे अंदर वॉलंटरी डिपार्टमेंट जो सवेरे से शाम तक कार्य करता है, जिसमें महत्वाकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, श्रेष्ठतम इच्छाएं हैं, वो सब कैसे इस चीजों में बदल जाता है, पसंद और नापसंद से, मान सम्मान की स्थिति में, महत्वाकांक्षा की अवस्था में, और कैसे यह डर, भय, लालसा इत्यादि पैदा करता है हमारे अंदर। तो सारा चीजें हम अपने अंदर देखना शुरू कर देते हैं। इंट्रोस्पेक्शन किसको कहते हैं, सवेरे शाम तक हम लोग बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन कैसे करेंगे, आत्मनिरीक्षण, व्हाट इज आत्मनिरीक्षण, क्या है, ये है आत्मनिरीक्षण। आप अपनी सभी सत्ताओं को अंदर से देखना शुरू करें, ये है आत्मनिरीक्षण, कि मैं कैसे हूं और क्या कर रहा हूं। वो जो मैं हूं ये तो इतने रूपों में हूं अंदर बैठा हुआ, वो मैं कोई एक नाम, नाम और रूप थोड़े बाहर से, जो आईना नहीं बदलता, आईना में देखो तो चेहरा नहीं बदलता, नाम नहीं बदलता, संबंध नहीं बदलते, तो हमको लगता है हम एक ही हैं, लेकिन अंदर पसंद और नापसंद, और यदि हम इन सत्ताओं की कार्य प्रणालियों के अंदर अंतर्मुखी होकर के जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि वाह, यहाँ तो बड़ा, अंदर तो बड़ी रचना है, बड़ा जंजाल भी है और बड़ा नाटक भी है, जिसमें सुखद भी है, मनोरंजक भी है, आकर्षक भी है, ढोल तमाशे भी है, सर्कस भी है, सब चीज भी है, और दुख, अशांति, पीड़ा, क्रोध, नफरत, बैर, घृणा भी है, सब चीजें भरी पड़ी है। यदि आप इसको देखने जाएंगे, इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, इसमें ही व्यंग, टोंट और कटाक्ष वाले, इस डिपार्टमेंट का काम है एक्चुअल में, इसमें व्यंग, टोंट और कटाक्ष आते हैं, इसमें ही हीनता के भाव आते हैं, इसमें ही करुणा के भाव आते हैं। तो इन सभी भावों पर निरीक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण और अभ्यास सृजनात्मकता वाली सोच के साथ प्रारंभ होता है, न कि विध्वंसात्मक सोच के साथ। राजयोग सृजनात्मक जीवन तथा कलात्मक जीवन जीने की कला सिखाता है। यदि आप इसे सीखकर इसमें प्रवीण बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, परंतु इसके लिए सही प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए हमें उसी प्रकार समय, संकल्प, धन और समर्पण की जरूरत पड़ती है जिस प्रकार एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, एक वैचारिक, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक कलाकार बनने में जिस तरह से प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से इंट्रोस्पेक्शन में भी प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। प्रशिक्षण प्राप्त करते समय या अभ्यास में प्रतिदिन लक्ष्य बनाकर उन गलत प्रवृत्तियों और संस्कारों में थोड़ा बदलाव लाना आवश्यक है। प्रशिक्षण द्वारा स्व का अनुशासन बढ़ता है, अर्थात गलत वृत्तियों और भावों पर आपका नियंत्रण स्थापित होने लगता है। इसके लिए प्यार से उस समझ और लक्ष्य के प्रति दिलचस्पी बनी रहे, इस भावों पर अंकुश प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा झूठे मन रूपी मैं के उदंड होने का खतरा बना ही रहता है, अन्यथा अंकुश के अभाव में साधना बाधित होती रहती है। जिस प्रकार समय के प्रशिक्षण में इस महत्व को जानना आवश्यक है, उसी प्रकार उस कार्य को पूरा होने में कितना घड़ी समय लगेगा, इसका पूर्व निर्धारण भी आवश्यक है, तभी विकास में तीव्रता लाई जा सकती है, यानी अपना टाइम टेबल भी फिक्स करें। किसी कार्य के प्रति निर्धारित समय सीमा का अभाव उसे लंबा प्रश्नवाचक स्थिति में ला खड़ा करता है। ठीक उसी प्रकार यदि आपने आंतरिक रूपांतरण की अलग अलग स्थितियों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं किया है तो वह रूपांतरण कब होगा के घेरे में फैलता रहेगा। बाबा कहते हैं अपनी दिनचर्या का मानसिक टाइम टेबल फिक्स करो, क्योंकि आदमी सोचता बहुत है और उसके अनुपात में करता कम है, इसलिए भले ही थोड़े करने की सोचे परंतु निर्धारित समय के अंदर उसे पूरा अवश्य करें। यह योग के संबंध भी हो सकता है और सेवा के संबंध में भी हो सकता है। अब ऐच्छिक सत्ता का ये हो गया, अब ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री सत्ता का इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट्स। अब वॉलेंट्री का, वॉलेंट्री हमारा ये शरीर वॉलेंट्री डिपार्टमेंट है, वॉलेंट्री सत्ता है, आँख कान नाक इंद्रियां जो सभी है ये वॉलेंट्री है। इसका इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट क्या है? इसका इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट है यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सृजन करता है, पेंटिंग करता है, एक कलाकार है, एक अभिनेता है, वो जब चाहे तब हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, जैसा चेहरा वैसा बना सकता है। चेहरा तो हम लोग भी वैसा ही बनाते हैं सवेरे से शाम तक, लेकिन हम जब चाहें जैसा वैसा नहीं बना सकते। इसके लिए इस यंत्र सत्ता में प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। प्रशिक्षित यंत्र सत्ता ही उस कार्य को कर सकता है। आपको कंप्यूटर दे दे आपको और आपको टाइपिंग नहीं करने आता और आपको कोई कमांड याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सपने में सोच सकते लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। सुशील भाई कंप्यूटर चलाते हैं और मैं अब तक सीखा ही नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा सीखा, छोड़ ही दिया उसको सीखने की। तो प्रशिक्षण की जरूरत है, ब्रेन को भी प्रशिक्षण की, हाथ के प्रशिक्षण की जरूरत है। यानी इंटेलेक्ट अब अंगुली में आ गया है, बुद्धि कहाँ है? अंगुलियों में है अभी। यदि एक चित्रकला बनानी हो तो मात्र दिमाग ही नहीं हाथ भी कुशल प्रवीण होना चाहिए। हाथ में यदि इंटेलेक्ट लाइन खींचने की स्थिति यदि हाथ में नहीं है और तब यह ऑटो रोबोट की स्थिति में आ जाता है, यह ऑटो ऑटोमेटिक कंप्यूटर की तरह। अब इसको देखने की जरूरत नहीं कि सौ कहाँ है और बौ कहाँ है और ए कहाँ है और बी कहाँ है, नहीं, अब जरूरत नहीं है। यंत्र मानव के प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है, इसलिए यह बौद्धिक विभाग है वॉलेंट्री का, ऐच्छिक सत्ता का यह बौद्धिक विभाग है। यांत्रिक यह इसका विभाग है, इसलिए इस विभाग को देखना है। यांत्रिक कार्य का बौद्धिक विभाग अत्यंत महत्व का है। कार्य करने की यह साधना अत्यंत रुचिवर्धक है। कोई भी शारीरिक कार्य जिसे आप अच्छी तरह करना जानते हो या वैसे कार्य जिसे आपने अच्छी तरह किया है तो आप देखेंगे उस कार्य में बहुत ही अनुसंधान अभ्यास और प्रयोग कार्य की जरूरत पड़ती है। ऐसे वो आप नहीं सीख सकते, अनुसंधान करना पड़ता है उसमें। सवेरे बैठे हैं योग में तो वही चीज़ सामने आएगी कि कैसे होगा, वो कैसे हुआ था, बहुत तरह से आपको अनुसंधान उसका करना पड़ता है। तब उस प्रशिक्षण के बाद, वो ट्रेनिंग के बाद आपके हाथ में या आपके आपके इस इंद्रिय सत्ता में वो चीज़ आती है, ऐसे नहीं आती है। यानी इसमें बौद्धिक डिपार्टमेंट की बहुत जरूरत है। ये इसका इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट है। किसका? वॉलेंट्री का, वॉलेंट्री का इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट है। इस प्रकार के शोध खोज कार्य के लिए यांत्रिक कार्य के बौद्धिक भाग की आवश्यकता होती है। जैसे अभिनेता का कार्य जो दूसरे को बोलने की तथा हाव भाव की नकल करता है, यह इसका बौद्धिक भाग है। यदि इसके साथ भाव चेतना संलग्न हो जाए तो इस कार्य में गुणवत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। यदि भावुक ढंग से भी हम इमोशनली उस कार्य को करें, इंटेलेक्चुअल और इमोशनली, तो उस कार्य को हम बहुत अच्छी कर सकते हैं। ऐच्छिक सत्ता का यांत्रिक या कामनात्मक भावुक विभाग, इमोशनल सेंटर। अब वॉलेंट्री का इमोशनल क्या है? इंटेलेक्चुअल तो देखा आपने, इस वॉलेंट्री का, इस हाथ पैर आँख नाक का इंटेलेक्चुअल क्या है, इसका इमोशनल क्या है? इंद्रियों के तल पर इसका संबंध ज्ञान से नहीं अपितु सुखोपभोग से है। ज्ञान से नहीं है इसका संबंध, भोग से है। भोग से कैसे? परंतु पसंद और आसक्ति के बस, भोग के अति और यांत्रिक आदत के बस दुख पाना इससे संबंधित है। स्वाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण, भोजन की इसको जरूरत है लेकिन स्वाद के बस हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो यह इस डिपार्ट सुखोपभोग, सुख पाने की कामना है, जरूरत, जरूरत पूरा हो चुका, लेकिन सुख तृप्ति जिसको हम बोलते हैं वो नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा और चाहिए, थोड़ा सा अधिक चाहिए। तो यह इस डिपार्टमेंट का काम है। यात्रा, प्रवास, नृत्य करना, गिटार सितार बजाना इत्यादि, इमोशनल है ना, इमोशनल माने भावुक है, लेकिन भावुकता किस चीज़ में प्रकट होगी, नाचना, नृत्य, गीत संगीत, गिटार बजाना, जो भी स्टेज पर स्टेज के कार्यक्रम है, वो सब इंद्रियों के कार्य है ना, लेकिन वो इमोशनल है, वो भावुक है, मतलब मनोरंजन से जुड़ा हुआ है ये कार्य। हाँ, ये आगे के डिपार्टमेंट में, ये इसका हम अभी वॉलेंट्री का इमोशनल किया ना, इसमें दो है, एक है आंसू और एक है स्वाभाविक आंसू, ये दो डिपार्टमेंट में आएंगे। खुशी के आंसू, एक आंसू स्वाभाविक है, किसी की आप रोड पर चल रहे हैं, बहुत दुख पीड़ा में कोई फंसा है तो द्रवित होकर के आंसू आ जाते हैं, वो आंसू अलग डिपार्टमेंट है, और भूखा फार के आप रो रहे हैं वो आंसू अलग डिपार्टमेंट है, और किसी अपने की सदमे पर आंसू बहाना अलग तरह से ये कार्य, ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट का कार्य है, डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है दोनों में। तो इस प्रकार घूमना, पिकनिक, मौज मस्ती, संगीत बजाना, खेल कूद, ये सब प्रेम या भावुक भाग है, परंतु यदि इस बात के साथ जब कोई अभिन्नता की अवस्था में आ जाता है तो इसका संबंध वहाँ से कटकर बौद्धिक या भावुक कार्य से जुड़ जाता है। इमोशनल होते ही हम सब गड़बड़ हो जाते हैं, हम संगीत बजा रहे हैं, बहुत अच्छा गिटार बजा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, और एक आकर के कान में बोलता है क्या बेसुरा गंदा बजा रहा, बस सारा गड़बड़ हो गया, बजाने का सारा काम क्रिय कराए पर पानी फिर गया। तो ये हर एक डिपार्टमेंट में अभिनेता की स्थिति होती है, ये इसका जो कार्य है ये इसका नुकसान भरा कार्य है, ये बेहोशी की अवस्था में होता है, स्वाभाविक कार्य से हट करके, ये स्वाभाविक कार्य चल रहा है नृत्य संगीत गीत, लेकिन इसमें और स्वाभाविक कार्य है अभिनेता की अवस्था, एसोसिएशन, एक रूपता जैसे हम हो जाते तब हम उस कार्य में फंस जाते हैं। इसके बाद ऐच्छिक डिपार्टमेंट वॉलेंट्री एक्चुअली डिपार्टमेंट का यांत्रिक विभाग क्या है उसी डिपार्टमेंट का वही, जैसे बौद्धिक डिपार्टमेंट का बौद्धिक भाग अलग है और ऐच्छिक डिपार्टमेंट का ऐच्छिक भाग अलग है। ऐच्छिक भाग है स्वाभाविक संचालित क्रिया है, ये इसका स्वाभाविक संचालित क्रिया क्या है, उठना, बैठना, चलना, फिरना स्वाभाविक कार्य है इसके, और बहुत जरूरी कार्य हैं और बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इस ऐच्छिक वॉलेंट्री को इस यांत्रिक विभाग, एक खुद ही यांत्रिक है, इसमें भी इसका जो यांत्रिक डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, सवेरे शाम तक चलना, फिरना, बैठना, उठना, लिखना, बोलना, अनुकरण करना, अनुकरण की शक्ति, यह यांत्रिक भाग है। मानव जीवन में इस कार्य की जबरदस्त भूमिका है, सवेरे से शाम तक आप इस कार्य में सक्रिय रहते हैं, और स्वाभाविक कार्य है, पेंसिल गिर गया पेंसिल को उठा लेना, ये सब इसके स्वाभाविक कार्य है। फोटो खींचना इसका स्वाभाविक कार्य है, लेकिन अभिन्नता की अवस्था में जैसे कोई सामने आ गया उस टाइम गुस्सा से अभी ये तुमको आना था, सारा गड़बड़ कर दिया, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल क्यों नहीं, क्योंकि आजकल डिजिटल है ना, खराब हो गया तो कोई बात नहीं दूसरा ले लेंगे, पहले तो डिजिटल वो था ना तो उसमें पैसा खर्च होता था, अभी इसमें पैसा खर्च नहीं होता इसलिए अभी गुस्सा नहीं आता। आप कोई फोटो खींच रहा है, आप बीच में रोड में चले जाओ, वो कोई भी नहीं करता, क्योंकि दूसरा खींच लेगा, फिर तीसरा खींच लेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले बहुत फर्क पड़ता था। यांत्रिक सत्ता का यांत्रिक विभाग या ऐच्छिक विभाग, अब वॉलेंट्री का इनवॉलेंट्री क्या है, ये बहुत सिंपल है, ये अब सिंपल है बहुत ज़्यादा। वॉलेंट्री का इनवॉलेंट्री क्या है, वॉलेंट्री का इनवॉलेंट्री है नींद में करवट बदलना, सोते हैं नेचुरल स्वाभाविक रूप से चादर ओढ़ के, कितनी बार 25 बार करवट बदल चुके होते, यदि कोई फोटो लगा वो वीडियो लगा के तो पता चले, वैसे हमको पता कुछ भी नहीं चलता, मच्छर को कब मार देते हैं मच्छर को भी पता नहीं और हमको भी पता नहीं फटाफट। तो ये सब कार्य इसका कार्य है, तो ये इसका यांत्रिक कार्य है, इसका फटाफट इसका पूरा करते हैं। अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री तो बहुत गुप्त है, इनवॉलेंट्री के कार्य तो चूंकि यहाँ भी अंदर छिपा हुआ है, इसलिए इस छिपे हुए भाग का जो इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट है वो क्या है, इस छिपे हुए भाग का इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल आप 1 किलो मिठाई खा लेते हैं, मेरे को छोड़ करके, मेरे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप 1 किलो मिठाई खाते हैं तो पैनक्रियाज निर्णय करता है कि कितना इंसुलिन बनाना है, आपको पता चलता है। सारा बुद्धिमानी से शरीर कार्य कर रहा होता है, आप खाली उपवास करते हैं और शरीर सारी व्यवस्था मैनेजमेंट कर लेता है और ठीक कर देता है आपके शरीर की सब बीमारियों को। वहां इंटेलेक्ट है ना, आपसे पूछता है कि हम 10 यूनिट इंसुलिन बनाए कि 5 यूनिट बनाए कि तुमने अभी 20 रसगुल्ले के बदले 27 रसगुल्ला खा लिया है, अब मुझे इंसुलिन थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा, पूछता है। वहां जबरदस्त बुद्धिमत्ता बैठी हुई, वो उस कार्य को बहुत ही सावधानी से करता है। तो यही इसका, जब एकदम से खतरे की पोजीशन आ जाती है और आप एकदम से तेजी से भागने लगते हैं, मदद करो, अरे बाबा मदद करो, कल की ही बात है, कल मेरे को बोलना पड़ेगा, बाबा बाबा करना पड़ा मुझे। क्या हुआ, तो झूले पर बैठे थे, इस पैर में नस चढ़ गए, और नस चढ़ता है तो पता है कितनी दर्द होती है, भयंकर इतनी पीड़ा, और कोई है भी नहीं वहाँ छत पर कि जिसको बोलूँ थोड़ा सा पैर दबाओ, अब कोई उपाय नहीं है भगवान के सिवा। और 2 मिनट तक हमें भयंकर पीड़ा हुई, कुछ नहीं कर सकते उसको, तो उस टाइम हम तो, लेकिन बुद्धि जो शरीर है उसकी जो बुद्धिमत्ता है वो अपने आप उसको, मैं भी सोता रहा ये कब तक चलेगा, बाप रे 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, लेकिन अपने आप ठीक हो गया, बाबा की मदद हम कहते हैं, बाबा को याद करते हैं तो हो जाता है। ये तो अनैच्छिक है ना, वॉलेंट्री का, ये अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, वो तो वही डिपार्टमेंट है ना, आप कुछ नहीं कर सकते ना इसमें, वो तो इसका वॉलेंट्री का, वॉलेंट्री है ये, वॉलेंट्री का इनवॉलेंट्री है, ऐच्छिक सत्ता का अनैच्छिक विभाग है ये तो बिना आपकी इच्छा से संचालित होता है अंदर से, आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके साथ, इसलिए शरीर की समस्त महत्वपूर्ण क्रियाओं के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते इसको, ओनली कुछ परिस्थितियों में मदद कर सकते हैं खाली, जैसे श्वास अपने आप चल रही है, प्राणायाम के माध्यम से आप थोड़ा सा ऊपर नीचे उसको थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। तो ये इसकी, हाँ, उसमें आप कुछ कर सकते हैं सुविधा और उसके अनुसार, नहीं तो वो सब काम, और आप भी जो कर रहे हैं ना उसमें भी उसका ही इंटरफेरेंस है। आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपने चूर्ण खा लिया, आपको लगता है कि मैंने कुछ कर लिया, लेकिन चूर्ण के साथ जो काम करना है वो उसको करना है, आपको नहीं करना है, आपने तो अंदर डाल दिया पानी के साथ, आप क्या कर रहे हैं उस चूर्ण के साथ, उस चूर्ण के साथ तो वो काम कर रहा है, 1000 तरह की केमिकल संरचनाएं बना रहा है और उसमें ठीक कर रहा है, वो हम नहीं कर रहे हैं, वही कर रहा होता है। तो इसका, हाँ, इसमें सारा, बहुत सारा, तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीटिंग, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथियों के नवनिर्माण के, कोषों के कार्य, ये सब इस विभाग का इंटेलेक्चुअल, कोष का निर्माण कैसे होता है, उसमें जो सेल होते हैं उसके अंदर टेलीमेयर्स होते हैं, सेल के उस तरफ आगे और पीछे 2 टेलीमेयर्स होते हैं, सेल टूटते रहते हैं, टेलीमेयर्स नहीं टूटते, और यदि टेलीमेयर्स टूट जाए तो आपकी शरीर की सारी स्मृतियाँ सब डिस्टर्ब हो जाएगी, तो टेलीमेयर्स, और वो जिसका टेलीमेयर जितना लंबा होगा उसकी सेल की जो आयु है वो उतनी लंबी ज़्यादा होगी, इसलिए लोग सेल नहीं टेलीमेयर्स देखते हैं, दोनों टेलीमेयर्स जो सेल के दोनों तरफ है, तो वो सेल टूट जाता है इसमें टेलीमेयर्स आता है और टेलीमेयर दूसरे सेल का निर्माण कर लेता है, फटाफट निर्माण हो जाता है। तो ये सब सारी प्रक्रियाएँ आप थोड़े करते बैठ करके, ये सब सारा इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट अंदर बैठा हुआ है, बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता से सृष्टि कार्य कर रही है। ऐच्छिक कार्य सत्ता का भावुक विभाग, अब इसका वॉलेंट्री का, इनवॉलेंट्री का इमोशनल डिपार्टमेंट क्या है, इनवॉलेंट्री का इमोशनल डिपार्टमेंट है भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, थकान, रोग, पीड़ा, ये रोग और पीड़ा इसमें इसी विभाग का काम है, मतलब ये इमोशनल विभाग का काम है, ये पीड़ा, भौतिक बल, उत्साह, स्थूल देह में प्रकट होने वाले भावावेग या भावावेश जन्य भावुक अनुभूतियाँ, इसकी अतृप्ति से उत्पन्न व्यग्रता और इसकी तृप्ति से भावुकता का भाव, जैसे प्यास लगी, इसका स्वाभाविक कार्य है। और प्यास की स्थिति को आप देखो कि जब आपको प्यास लगती है तो जब आप प्यास को बुझाना शुरू करते थे तो प्यास की तीव्रता बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। इसलिए कई बार हम कहते हैं नहीं है खाना, अभी भूख लगी है, नहीं खाऊंगा नहीं, क्योंकि शुरू किया तो ना। इसका अर्थ है कि पहले कौर से आपका भूख बढ़ जाता है और धीरे धीरे जब कौर धीरे धीरे बढ़ता जाता है तब भूख कम होना शुरू होता है। अब धीरे धीरे अब तृप्ति की तरफ हम आगे के स्थितियों में बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं, हाँ, इकोनॉमिक्स में ह्रास, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उसमें नहीं जाएंगे अभी हम। तो चूंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, हाँ, बहुत डिपार्टमेंट्स अंदर है, तो कंफ्यूजन नहीं, जानने की बात है कि हमने अभी जाना और इसको अच्छी तरह हम जान सकते हैं। इसको अच्छी तरह जानने के लिए क्या क्या करना है, एक किताब लेकर के ही तो पढ़ना है। लाइब्रेरी में हमने दो दो तीन कापियाँ सब रखी है, कापी रख दिया और भी रख देंगे आप। नहीं तो बोलते लोग इंट्रोस्पेक्शन, क्या करेगा इंट्रोस्पेक्शन, आदमी कहाँ जाएगा, किधर इंट्रोस्पेक्शन। ये इसका ऐच्छिक है, इसका यांत्रिक भाग है, वॉलेंट्री का यांत्रिक भाग है इसका। दो रह गया, बस एक मिनट में पूरा हो जाएगा। इसका यांत्रिक भाग है वजन, नमी, सूखा, तापमान में सुखद दुखद नहीं होना, एक रूपता की परिस्थिति में इसकी प्रतिक्रिया तटस्थ नहीं रहती। आप ये उठा रहे हैं, ये इसका इनवॉलेंट्री का क्या है, वॉलेंट्री डिपार्टमेंट। नमी को महसूस कर रहे हैं, गर्मी को महसूस कर रहे हैं, इसको वजन उठा रहे हैं, इसमें कुछ भी इस बात की, लेकिन नमी को महसूस कर रहे हैं सब चीज़ को। और आपके हाथ में कोई सांप पकड़ा दे तो उसकी बीच प्रतिक्रिया होगी, तुरंत प्रतिक्रिया होगी। तो प्रतिक्रिया एक रूपता की अवस्था में अलग होगी, लेकिन यह सब तटस्थ है, इसमें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म है। और इसका जो अनैच्छिक विभाग है वो निरपेक्ष संवेदना है, हास्य उबासी, लाल पीला हो जाना एकदम से, ऑल ऑफ सडन कोई बात होती है तो लाल पीला हो जाते हैं, माने गुस्से में लाल पीला होते हैं ऐसा नहीं, और भी बहुत सी बातों से हम लाल पीला होते हैं, बहुत तरह के इमोशनल है जिसमें हम लाल पीला होते हैं। तो इस तरह के इसके कार्य है, यांत्रिक कार्य है। तो इसके साथ ही समय हुआ, इसके और भी बहुत बहुत विस्तार है कि इन बौद्धिक सत्ता भावुक सत्ता को शुद्ध कैसे करें, बौद्धिक सत्ता ये चारों सत्ताएं कैसे, क्या एक दूसरे में टांगर आती है काम करने में, इन दोनों का एक साथ अलग काम है, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न डाले हैं उसके उत्तर, जो आपको लोगों को बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे ना इस संबंध में, उस सब बहुत सारे प्रश्न को हमने डाले हैं और उसके उत्तर डाले हैं सारे इस किताब के अंदर। तो आप पढ़ करके उसका समाधान कर सकते हो, और यहाँ तो सुविधा है, पढ़ के समाधान कर सकते हो और लिखने वाला भी बैठा हो, चलते फिरते उसके कान में पूछ सकते कि ये क्या लिखा है बता, क्योंकि किताब तो नहीं बोलता है, लेकिन हम बोल सकते ओम शांति।